अगर कोई ये कहे कि जिस वक्त को हम आम तौर पर पत्थरों और गुफाओं का युग मानते हैं, ठीक उसी दौरान कुछ लोग खेती कर रहे थे या तार वाले संगीत यंत्र बना रहे थे, यहाँ तक कि लोहे और कांसे के हथियार भी ढाल रहे थे, तो क्या इस पर यकीन करना आसान होगा?
बिल्कुल नहीं, ये तो सुनने में ही थोड़ा अजीब लगता है।
वही ना, मॉडर्न साइंस और इतिहास की किताबें तो हमें एक बिल्कुल सीधी क्रमबद्ध टाइमलाइन दिखाती हैं। पहले शिकार, फिर खेती, फिर पहिया और फिर धातु का इस्तेमाल।
हाँ, एक लीनियर प्रोग्रेशन जिसे कहते हैं।
सही कहा। लेकिन प्राचीन इतिहास के कुछ ऐसे पन्ने हैं जो इस साफ सुथरी टाइमलाइन को मतलब पूरी तरह हिलाकर रख देते हैं। और आज की इस गहन चर्चा में हम रॉबर्ट वॉन नॉय के ओल्ड टेस्टामेंट हिस्ट्री के लेक्चर 13 के नोट्स और खास तौर पर जेनेसिस 4 और 5 के संदर्भ पर बात करने वाले हैं।
राइट, ये काफी गहरा और रोचक स्रोत है।
हाँ, और इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि इन प्राचीन कथाओं में दर्ज मानव विकास का शुरुआती दौर किस तरह आज के वैज्ञानिक और ऐतिहासिक नजरिए को एक कड़ी चुनौती देता है। चलिए इस पूरे विषय की गहराई में चलते हैं और इसे विस्तार से समझते हैं।
तो इस विषय को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस दौर में जाना होगा जिसे बाढ़ यानी फ्लड से पहले की दुनिया कहा जाता है। जेनेसिस 4 के हवाले से वॉनोई के नोट्स एक ऐसी दुनिया का चित्र पेश करते हैं जो किसी आदि मानव की दुनिया जैसी बिल्कुल नहीं लगती।
कैसे?
देखिए, शुरुआत में ही बताया गया है कि एबल भेड़ चराता था और केन जमीन पर खेती करता था।
एक मिनट रुकिए, यहाँ एक उलझन है। हमने तो हमेशा यही पढ़ा है कि शुरुआती इंसान हंटर गैदरर थे, है ना?
हाँ, आम धारणा वही है।
यानी वो सिर्फ शिकार पर और जंगलों से इकट्ठा किए गए खाने पर निर्भर थे। खेती करना और जानवरों को पालना, जिसे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स कहते हैं, ये तो मानव सभ्यता में हजारों साल बाद आया एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक और सामाजिक विकास माना जाता है। लेकिन यहाँ स्रोतों में इसे मानवता की बिल्कुल शुरुआती पीढ़ियों के साथ जोड़ दिया गया है, ये थोड़ा अजीब नहीं लगता?
यही तो इस चर्चा का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है। ये स्रोत इशारा करते हैं कि बाढ़ से पहले की मानवता के पास शुरुआत से ही एडवांस टेक्निक और ज्ञान था, और बात सिर्फ खेती या जानवर पालने तक सीमित नहीं है।
अच्छा, और क्या मिला है उसमें?
अगर हम केन के वंश में थोड़ा आगे बढ़ें तो इनोक का जिक्र आता है। इनोक ने एक शहर बसाया।
शहर मतलब आज के मेट्रोपोलिसिस जैसा कुछ?
नहीं नहीं, आज के आलीशान मेट्रोपोलिसिस जैसा नहीं, बल्कि एक स्थायी गांव यानी परमानेंट सेटलमेंट। फाइनेगन जैसे पुरातत्वविदों के शोध ये बताते हैं कि सबसे शुरुआती गांव लगभग 5000 बीसी के आसपास पाए गए हैं।
5000 बीसी काफी पुराना है।
बिल्कुल, वनोई का विश्लेषण ये कहता है कि बाइबल दरअसल बाढ़ से पहले की एक विकसित संस्कृति की बात कर रही है जो बाद में तबाह हो गई और मानवता को वापस उस विकास तक पहुंचने में सदियां लग गईं।
ये एक बिल्कुल नया नजरिया है सोचने का। पर खेती और गांव बसाने से भी ज्यादा एक और चीज है जो नोट्स में मुझे काफी हैरान करती है, वो है संगीत का जिक्र।
आहा, जुबाल की कहानी।
राइट, जबल के भाई जुबल के बारे में लिखा है कि वो उन सभी का पिता था जो हार्प और पाइप बजाते थे, यानी तार वाले और हवा से बजने वाले संगीत यंत्र।
सही कहा।
ये पढ़ने में एक बहुत छोटी डिटेल लग सकती है, लेकिन फिजिक्स और क्राफ्ट के नजरिए से अगर हम देखें तो एक हार्प बनाने के लिए ध्वनि विज्ञान यानी अकूस्टिक्स, तारों का टेंशन और लकड़ी के रेजोनेंस की काफी गहरी समझ होनी चाहिए। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी गुफा में बैठकर अचानक से आविष्कार हो जाए।
बिल्कुल नहीं, संगीत और कला का विकास एक गहरी सांस्कृतिक और बौद्धिक उन्नति की निशानी है। ये दर्शाता है कि लोग सिर्फ अपने जीवन यापन यानी सिर्फ सर्वाइवल के लिए संघर्ष नहीं कर रहे थे, बल्कि उनके पास फुर्सत का समय और एक रचनात्मक सोच भी थी। लेकिन यहां तक तो फिर भी बातों को किसी तरह हजम किया जा सकता है। असली ऐतिहासिक टकराव तब होता है जब स्रोत में धातु विज्ञान यानी मेटलर्जी का जिक्र आता है।
हाँ, और यहाँ मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि टूबल केन की कहानी ने मेरे दिमाग में चल रही इतिहास की उस सीधी टाइमलाइन को पूरी तरह उलझा दिया है।
कैसे?
टूबल केन के बारे में लिखा है कि वो कांसा यानी ब्रॉन्ज और लोहा यानी आयन के हर शिल्पकार का प्रशिक्षक था, और उसकी एक बहन भी थी, नामा।
राइट।
अब मुद्दा यह है कि स्टैंडर्ड हिस्ट्री के अनुसार आयरन एज यानी लौह युग लगभग 1200 बीसी में शुरू हुआ था, फिलिस्टीन्स और इजराइलाइट्स के दौर में, और ब्रॉन्ज एज को लगभग 3000 बीसी के आसपास माना जाता है। तो फिर जेनेसिस 4 जैसी अत्यंत प्राचीन कथा में लोहे का जिक्र कहां से आ गया? ये तो पूरी तरह से एनाक्रोनिस्टिक है, यानी समय के क्रम के बिल्कुल विरुद्ध।
सुनने में एनाक्रोनिस्टिक लगता जरूर है।
क्या ये संभव नहीं कि लिखने वाले ने अपनी तरफ से बाद की तकनीक को पुरानी कहानियों में जोड़ दिया हो, अपनी कहानी को बड़ा दिखाने के लिए?
यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमारा ऐतिहासिक ज्ञान और डेटिंग के जो तरीके हैं वो उतने मुकम्मल नहीं है जितना हम उन्हें मानते हैं।
अच्छा, मतलब हम गलत हो सकते हैं।
बिल्कुल। वैन नोए के नोट्स में स्टाइजर्स और हेज की कमेंट्री का जिक्र है जो स्टैंडर्ड टाइमलाइन को सीधे चुनौती देते हैं। स्टाइजर्स ये तथ्य पेश करते हैं कि एनाटोलिया में एक शासक के मकबरे से एक लोहे का खंजर मिला है।
लोहा उस दौर में?
हाँ, और ये खंजर लगभग 2400 से 2200 बीसी का है। ये आमतौर पर माने जाने वाले आयरन एज से लगभग 1000 साल पहले की बात है।
लेकिन रुकिए, सिर्फ एक खंजर के मिलने से हम पूरे लौह युग को 1000 साल पीछे कैसे धकेल सकते हैं? क्या ये एक अकेला अपवाद, मतलब एक एनोमली नहीं हो सकता?
एक वैलिड सवाल है।
हो सकता है किसी राजा के पास बाहर से लाया गया हो, या शायद किसी मीटराइट से निकाले गए लोहे का अकेला हथियार हो। एक सबूत के आधार पर पूरे इतिहास की टाइमलाइन को गलत ठहराना थोड़ा जल्दबाजी नहीं लगता?
यह संदेह बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन स्रोत इस पर एक मेथोडोलॉजिकल जवाब देता है। बात सिर्फ एनाटोलिया की नहीं है। हेंस ने अपनी किताब द सेप्टर ऑफ इजिप्ट में बताया है कि प्री डायनेस्टिक इजिप्ट में, यानी लगभग 4000 से 3200 बीसी के बीच, लोहे के मनखे या बीड्स मिले हैं।
4000 बीसी में लोहे के मनखे?
हाँ। अब भले ही ये लोहा मीटियोराइट से आया हो या जमीन से निकाला गया हो, ये इस बात का ठोस प्रमाण है कि मानवता को 1200 बीसी से हजारों साल पहले लोहे की पहचान थी और उस पे काम करना आता था।
वाओ, ये तो वाकई हैरान करने वाला है।
यहाँ समझने वाली बात यह है कि आर्कियोलॉजी दरअसल कैसे काम करती है। पुरातत्व विज्ञान में एज या युग किसी मटीरियल के सबसे पहले आविष्कार को नहीं दर्शाता, बल्कि उस वक्त को दर्शाता है जो वो मटेरियल आम लोगों के बीच बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने लगा।
ओ, अब समझ आई बात।
हाँ, तो लोहा शायद आम इस्तेमाल में 1200 बीसी में आया हो, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसकी खोज उससे पहले हुई ही नहीं थी।
ये पॉइंट काफी हद तक तस्वीर साफ करता है, लेकिन फिर भी अगर बाढ़ से पहले इतनी एडवांस्ड मेटलर्जी और कल्चर था, तो हमारे पास उसके ठोस पुरातात्विक सबूत क्यों नहीं है? जमीन के नीचे ऐसे कारखाने या शहरों के खंडर क्यों नहीं मिलते जो इस विकसित दौर को साबित कर सकें?
इसका सीधा सा कारण है आर्कियोलॉजी के सबूतों का टुकड़ों में बंटा होना, जिसे फ्रैगमेंटरी नेचर ऑफ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस कहा जाता है। किसी सबूत का जमीन से ना मिलना इस बात की गारंटी नहीं है कि वो चीज कभी अस्तित्व में थी ही नहीं।
राइट।
जमीन के नीचे बची हुई चीजों का मिलना बहुत से फैक्टर्स पर निर्भर करता है, जैसे मौसम, तबाही का स्तर और खुदाई आखिर कहाँ की जा रही है।
इससे थोड़ा बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं सोच रही थी एक एनालॉजी यहाँ काफी काम आएगी।
हाँ बिल्कुल, बताएं।
देखिए, आर्कियोलॉजी दरअसल उस पुरानी 3 घंटे की मूवी की तरह है जिसके लगभग सारे प्रिंट चल चुके हैं और हमारे पास सिर्फ 2 या 3-5 सेकंड की ब्लर क्लिप्स बची हैं।
काफी सटीक उदाहरण है।
अब उन 2-3 छोटी क्लिप्स को देखकर पूरी मूवी की कहानी, उसके कैरेक्टर्स और उसके प्लॉट के बारे में निश्चित तौर पर तय करना बहुत बड़ी भूल होगी, है ना? उन क्लिप्स में जो नहीं दिख रहा उसका मतलब ये नहीं कि वो मूवी में था ही नहीं।
ये एनालॉजी एकदम परफेक्ट है, और इसलिए वॉन नोए का तर्क है कि सिर्फ पुरातात्विक सबूतों की कमी के आधार पर किसी प्राचीन लेख को सीधे तौर पर गलत ठहराना मेथोडोलॉजिकल नजरिए से त्रुटिपूर्ण है।
राइट।
हो सकता है उस एडवांस सिविलाइजेशन के सबूत इतने नष्ट हो चुके हों या मिट्टी के इतने गहरे स्तर में दबे हों कि हम उन तक आज तक पहुंच ही नहीं पाए हैं।
चलिए, अब हमारे सामने एक अलग ही स्थिति उत्पन्न होती है। इन प्राचीन स्रोतों के अनुसार हम मान लेते हैं कि उनके पास खेती की तकनीक थी, संगीत था और लोहे या कांसे के हथियार बनाने की कला थी।
हाँ।
पर अब यहाँ एक दूसरा और शायद ज्यादा जरूरी सवाल खड़ा होता है। उन्होंने इन एडवांस तकनीकों का आखिर किया क्या? तकनीक का होना एक बात है, पर उसके साथ मानव स्वभाव का कैसे टकराव होता है ये देखना काफी रोचक है। यहां से इतिहास 2 अलग कार्यों में बंट जाता है, केन का रास्ता और सेथ का रास्ता।
सही दिशा में मुड़ रहे हैं हम यहाँ। देखिए, टेक्निक अकेले आगे नहीं बढ़ती, वो अपने साथ सामाजिक बदलाव भी लाती है। केन के वंश में हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि तकनीक और संस्कृति का बहुत तेजी से विकास हुआ। तुबल केन धातु का काम का पाखा, ज्यूबल संगीत बना रहा था, लेकिन इन सभी विकास के साथ साथ इस वंश में अहंकार, हिंसा और खुद पर जरूरत से ज्यादा भरोसा पनप रहा था,
जिसे हम सेल्फ सफिशिएंसी कहते हैं, है ना?
बिल्कुल। जब इंसान को लगने लगता है कि उसके द्वारा बनाई गई तकनीक ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है और उसे किसी की जरूरत नहीं,
और इस अहंकार का सबसे भयानक और बड़ा प्रतीक बनकर उभरता है लमेच।
हाँ, लमेच की कहानी।
लमेच की कहानी एक डार्क ट्विस्ट की तरह सामने आती है। स्रोत बताते हैं कि उसने उन लोहे और कांसे के हथियारों का इस्तेमाल किया जो उसके परिवार में बन रहे थे। लमेच ने एक आदमी को सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि उसने लमेच को चोट पहुंचाई थी।
काफी डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन था।
और इस कत्ल के बाद उसे कोई पछतावा भी नहीं था, बल्कि उसने अपनी ताकत का दिखावा करते हुए एक कविता जैसी घोषणा की, जिसमें उसने कहा कि अगर केन का बदला 7 गुना लिया जाएगा तो लामेक का बदला 77 गुना यानी 77 फोल्ड लिया जाएगा।
राइट।
ये तो पूरी तरह से तकनीक के नशे में चूर एक डिक्टेटर जैसी सोच लगती है ना।
ये सिर्फ गुस्से का इजहार नहीं था, ये दरअसल लमेक की इस सोच का प्रमाण था कि अब उसके पास नए हथियार हैं, ताकत है, तो वो किसी भी नैतिक या ईश्वरीय कानून से पूरी तरह ऊपर है। वो हथियारों की ताकत पर खुद को सबसे बड़ा साबित कर रहा था।
बिल्कुल।
इसके अलावा लमेक के संदर्भ में श्रोत एक और बड़ा सामाजिक पतन दर्शाता है। लमेक की दो पत्नियां थीं, अदा और जिला।
ओ, पॉलीगेमी।
पवित्र शास्त्रों में ये पॉलीगेमी यानी बहुविवाह का सबसे पहला जिक्र है। ये उस शुरुआती मोनोगमस आदर्श के बिल्कुल उलट था जहां एक पति और एक पत्नी की बात की गई थी। केन का वंश ये दिखाता है कि भौतिक तकनीक तो बढ़ रही थी पर नैतिकता बहुत तेजी से गिर रही थी।
फिर हम आते हैं दूसरे रास्ते पर। दूसरी तरफ जेनेसिस 5 में सेथ के वंश का विस्तृत जिक्र है, पर सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सेथ के वंश की पूरी पीढ़ियों का विवरण पढ़ने पर उसमें किसी बड़ी तकनीकी उपलब्धि, किसी नए हथियार या किसी शहर के बसाने का जिक्र बिल्कुल नहीं मिलता। दोनों वंश जैसे बिल्कुल अलग दिशा में जा रहे थे।
और इसका मतलब ये नहीं है कि सेथ के वंश के लोग बिल्कुल गवार थे या उनके पास ज्ञान नहीं था। वनोई के नोट समझाते हैं कि श्रोत दरअसल इस बार पर जोर देना चाहता है कि सेथ के वंश का मुख्य फोकस भौतिक उपलब्धियां या ताकत इकट्ठा करना नहीं था। उनकी अहमियत ऐतिहासिक उद्धार यानी रिडेम्प्टिव हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस और आध्यात्मिक दिशा में थी।
यानी उनका लक्ष्य अलग था।
बिल्कुल। उनका लक्ष्य तकनीक की मदद से खुद को ताकतवर दिखाना नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक और नैतिक जीवन जीना था।
यहाँ पर ये पूरी चर्चा मानवता के सामने एक बहुत बड़ा दार्शनिक सवाल खड़ा करती है।
कैसा सवाल?
अगर हम काइन के वंश के विकास को और लमेक की हिंसा को देखें, तो क्या हमें ये निष्कर्ष निकालना चाहिए कि तकनीक, विज्ञान और संस्कृति अपने आप में ही विनाशकारी हैं? क्या नए आविष्कार हमेशा मानवता को अहंकार, शोषण और टकराव की दिशा में ले जाते हैं?
ये सोचने वाली बात है,
क्योंकि लमेक की कहानी तो यही संकेत देती लगती है कि जहां एडवांस तकनीक आएगी वहां हिंसा जरूर पनपेगी।
अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो ये सवाल सदियों से चला आ रहा है, क्या विज्ञान और नैतिकता एक साथ चल सकते हैं? और स्रोत में इस सवाल का जवाब देने के लिए जे. ग्रेशम मैचन के एक लेख क्रिश्चियनिटी एंड कल्चर का सहारा लिया गया है।
मैचन क्या कहते हैं इस बारे में?
ये लेख काफी गहराई में जाकर इस मुद्दे को सुलझाता है कि एक नैतिक व्यक्ति का तकनीक और संस्कृति के साथ आखिर कैसा रिश्ता होना चाहिए। मैचन अपने विश्लेषण में तीन अलग अलग नजरियों की चर्चा करते हैं जो मानवता अमूमन चुनती है।
ये तीन नजरिए क्या हैं? इसे समझना शायद आज के दौर में सबसे ज्यादा जरूरी है।
पहला नजरिया जिसे मैकिन बताते हैं वो है सबॉर्डिनेशन।
सबॉर्डिनेशन, इसका क्या अर्थ हुआ?
इसका अर्थ है अपने धर्म, अपनी नैतिकता और अपने विश्वास को मॉडर्न कल्चर और तकनीक के आगे झुका देना। इस सोच के लोग मानते हैं कि विज्ञान और तकनीक ही सबसे ऊपर है और नैतिक कानून सिर्फ तकनीक का एक उत्पाद है।
अच्छा, तो लैमिक इसका प्रतीक था?
एकदम सही पकड़ा। उसने अपनी हथियारों की ताकत के आगे नैतिकता को पूरी तरह दबा दिया। मचिन इस रास्ते को पूरी तरह से नकारते हैं क्योंकि जब तकनीक नैतिकता को पीछे छोड़ देती है तो समाज में सिर्फ शोषण और हिंसा का जन्म होता है।
इसका मतलब सबॉर्डिनेशन वो रास्ता है जहां लैमिक जैसे लोग बनते हैं। तो लोग अक्सर इसके डर से दूसरा रास्ता अपनाते होंगे, और शायद वो रास्ता है तकनीक से पूरी तरह भाग जाना।
सही समझा आपने, दूसरे रास्ते को मचन विड्रॉल कहते हैं, यानी अलगाव। लैमिक जैसो का अहंकार देखकर कुछ लोग तय करते हैं कि ये सारे तकनीक, खेती और हथियार ही बुराई का कारण है, इसलिए इन सबसे दूर रहो। ये लोग मॉडर्न कल्चर और विज्ञान को छोड़कर बिल्कुल अलग हो जाते हैं।
ये रास्ता हम आज भी देख सकते हैं, है ना? ऐसे कई समुदाय या विचारधाराएं हैं जो इंटरनेट, मॉडर्न मेडिसिन या टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से बुरा मानती हैं। उन्हें लगता है कि अगर सोशल मीडिया लैमिक जैसा अहंकार और गुस्सा ला रहा है तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल ही बंद कर दो।
राइट।
लेकिन मचिन इस विथड्रॉल के रास्ते को भी सही नहीं मानते। पर क्यों? अगर कल्चर बुराई की तरफ जा रहा है तो उससे किनारा कर लेना तो एक सुरक्षित रास्ता लगता है।
सुरक्षित लगता जरूर है, पर हकीकत में ये एक बड़ा धोखा है। मचिन कहते हैं कि अगर नैतिक और अच्छे लोग विज्ञान और तकनीक से दूर हो जाएंगे तो वो पूरी तकनीक सिर्फ बचे हुए अहंकारी और अनैतिक लोगों के हाथों में चली जाएगी।
ओ, ये तो बहुत पॉइंट की बात है।
हाँ, अगर हमने खेत छोड़ दिए तो वहां बेहतर फसल नहीं उगेगी, बल्कि जंगली घास और झाड़ियां पूरे खेत को तबाह कर देंगी। विड्रॉल समाज को सुरक्षित नहीं करता, बल्कि उस पर लैमिक्स जैसे लोगों का कब्जा तय कर देता है। इसलिए मैकेन एक तीसरे रास्ते का प्रस्ताव रखते हैं जो सबसे सटीक और संतुलित है, और उस रास्ते का नाम है कॉन्सेक्रेशन।
कॉन्सेक्रेशन यानी समर्पण। इसे थोड़ा विस्तृत रूप से समझते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि हमें तकनीक को ना तो भगवान मानना है और ना ही उससे भागना है।
बिल्कुल। कॉन्सेक्रेशन का सिद्धांत कहता है कि इंसान को वैज्ञानिक और तकनीकी विकास में पूरी तरह शामिल होना चाहिए। खेती की नई तकनीकें खोजनी चाहिए, नए आविष्कार करने चाहिए, लेकिन उनका उद्देश्य और उनका समर्पण एक ऊंचे नैतिक और ईश्वरीय लक्ष्य की ओर होना चाहिए।
यानी इंटेंशन मैटर करता है।
हाँ, हथियार बनाकर दूसरों पर धौंस यावाने की जगह तकनीक का इस्तेमाल बीमारियों को ठीक करने, गरीबी हटाने और सृष्टि को बेहतर बनाने के लिए होना चाहिए। मार्कचन ये स्पष्ट करते हैं कि विज्ञान या संगीत या खेती अपने आप में कभी बुरी नहीं होती। बुरी वो भावना है जिससे उनका उपयोग किया जाता है।
इस बात को अगर हम आज के परिदृश्य में देखें तो बहुत ही रोचक लगता है। अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, जो आज के दौर का लैमिक या तुबलकेन वाला विकास है।
बहुत अच्छा कंपैरिजन है।
देखिए, अगर एआई का सबोर्डिनेशन होता है तो इसका इस्तेमाल डीप फेक्स और फेक न्यूज फैलाने में होगा, जहां ताकतवर लोग और ताकतवर होंगे।
राइट।
और अगर हम विड्रॉल अपनाते हैं तो हम इस नई तकनीक के फायदों से पूरी तरह कट जाएंगे और दुनिया की भलाई में योगदान नहीं दे पाएंगे। पर कॉन्सेक्रेशन का मतलब होगा एआई को सीखना, उसमें महारत हासिल करना और फिर उसका उपयोग कैंसर सेल्स को जल्दी डिटेक्ट करने या मौसम के बदलाव को रोकने के नैतिक उद्देश्य से करना।
ये बहुत ही शानदार उदाहरण दिया आपने, और स्रोत दरअसल यही संदेश देना चाहता है कि सेठ के वंश ने भले ही नए आविष्कार नहीं किए हों, पर जब हम अपनी नई तकनीक को सेठ जैसी आध्यात्मिक जिम्मेदारी और नैतिक पवित्रता के साथ जोड़ देते हैं तो वो कॉन्सेक्रेशन बन जाता है। तकनीक आगे बढ़नी चाहिए, पर उसके स्टीयरिंग व्हील पर नैतिकता होनी चाहिए।
इन सब बातों को अगर समेटा जाए तो आज की इस चर्चा ने प्राचीन इतिहास के उन पन्नों की धूल साफ की है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं।
हमने देखा कि बाढ़ से पहले की दुनिया सिर्फ गुफाओं में रहने वालों की नहीं थी।
बिल्कुल। खेती, संगीत और धातु विज्ञान जैसे आविष्कार वहां शुरुआत में ही दिखाई दिए। स्टाइगर्स और हेज के हवाले से हमने ये भी समझा कि हमारे इतिहास के तय किए गए माइलस्टोन्स जैसे 1200 BC का आयरन एज पुरातन सबूतों की दुष्प्राप्यता और उनकी फ्रैगमेंट्री नेचर की वजह से पूरी तरह पक्के नहीं माने जा सकते। सिर्फ सबूत ना मिलना इस बात का प्रमाण नहीं है कि कोई प्राचीन दस्तक गलत है।
और सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस विश्लेषण से उभर कर आती है वो ये सीखी कि तकनीक के विकास और मानव अहंकार के टकराव से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, माहिचन का कॉन्सेक्रेशन। तकनीक को अपनाना और उस पर जिम्मेदारी के साथ नैतिकता का प्रयोग करना। लामेह की तरह तकनीक का गुलाम बनने के बजाय उसे एक बेहतर दुनिया बनाने के लक्ष्य के लिए समर्पित करना। ये सुनने वालों के लिए आज के इन्फॉर्मेशन ओवरलोड वाले जमाने में एक बहुत बड़ी सीख है।
एक ऐसे तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ जो दरअसल इस पूरी पजल को एक नया ही आयाम देता है। वनॉय के नोट्स के बिल्कुल अंत में एक बहुत दिलचस्प पॉइंट पर रोशनी डाली गई है।
वो क्या है?
जेनेसिस 5 की जीनियोलॉजी यानी सेथ के वंश के अनुसार आदम से लेकर नोआ तक का जो समय रहा है उसकी कोई निश्चित क्रोनोलॉजी या टाइमलाइन तय नहीं की जा सकती। ये बताया गया है कि इन पीढ़ियों के बीच समय का अंतर, वो इंटरवल, पूरी तरह से अज्ञात है। हम ये जानते ही नहीं कि ये अंतर कितने हजार या शायद कितने लाख सालों का था।
ये एक बहुत ही गहरी और अदृश्य खाई है सच में, इतिहास का एक ऐसा खाली पन्ना जिस पर कभी कुछ लिखा नहीं गया।
तो इस गहन चर्चा के अंत में ये सोचना बहुत ही हैरतअंगेज लगता है कि अगर ये समय का अंतर इतना बड़ा और अज्ञात है जिसके दौरान कुछ ऐसे आविष्कार दर्ज हुए जो हमारी स्टैंडर्ड आर्कियोलॉजी की टाइमलाइंस को पूरी तरह चुनौती देते हैं, तो जरा कल्पना करना दिलचस्प होगा कि इस पूरे अनजान लंबे वक्त के दौरान और कितनी ऐसी एडवांस तकनीकें, कितने आलीशान शहरों के निर्माण और कितनी विकसित संस्कृतियां पैदा हुई होंगी। वो सब कुछ जो किसी भी इतिहास के पन्नों में दर्ज होने से पहले ही मिट्टी की गहरी परतों में हमेशा के लिए दफन हो गया और खो गया। क्या ये संभव नहीं कि आज की जिस मॉडर्न तकनीक को मानवता अपना सबसे बड़ा और अकेला आविष्कार मानती है, वो किसी भूली हुई वक्त की धूल में दबी प्राचीन सच्चाई का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हो? यही वो उलझन है जो ये साबित करती है कि इतिहास की कहानी उतनी सीधी बिल्कुल नहीं है जितनी वो शुरुआत में नजर आती थी।